नमस्कार भारत, 13 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं रेहान फजल। एफबीआई के मनोनीत निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा, रूस और ट्रंप की टीम से साठगांठ की जांच में किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा।
As the future FBI director, you consider this endeavor a witch hunt?
I do not consider Director Mueller to be on a witch hunt.
बेरोजगारी श्रृंखला में चर्चा होगी उन महिलाओं की जिन्होंने खुद अपना रोजगार शुरू किया।
एक लड़की होना should not be a reason कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बल्कि it should be a better thing.
एंडी मरे और जोकोविच दोनों विंबलडन से बाहर हुए, रॉजर फेडरर एक बार फिर सेमीफाइनल में।
Can't believe it, 100 matches, it's a lot, but very happy that my body kept me going over all these years and it was a perfect setting.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के नए निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि वे नहीं मानते कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच निशाना बनाकर की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसे राजनीतिक इतिहास में निशाना बनाकर की जाने वाली सबसे बड़ी जांच बताया था। 50 वर्षीय रे ने संसदीय समिति के सामने सुनवाई में कहा कि अगर राष्ट्रपति उनसे कुछ भी गैरकानूनी करने को कहते हैं तो वे पद छोड़ देंगे। रे ने संसदीय समिति के सामने कहा,
इफ आई एम गिवन द ऑनर ऑफ लीडिंग दिस एजेंसी आई विल नेवर अलाउ द एफबीआईस वर्क टू बी,
मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि एफबीआई का काम तथ्यों, कानून और न्याय की हद से परे हटकर हो। मेरी वफादारी संविधान, कानून और एफबीआई के मिशन के प्रति है। ये थे एफबीआई के नए निदेशक क्रिस्टोफर रे के शब्द। सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नाजरान के एक घर में आग लगने से 10 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस घर में एक भी खिड़की नहीं थी जिससे धुआं बाहर निकल पाता। सभी मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई है। इस घटना को लेकर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि जेद्दाह स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी नाजरान जा रहे हैं। भारत से बड़ी संख्या में कामगार सऊदी अरब जाते हैं। लगभग 30 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 9.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लूला को यह सजा सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में भारी गबन और घूस लेने को लेकर दी गई है। अदालत ने कहा कि वह सजा के खिलाफ अपील कर जेल से बाहर रह सकते हैं। वामपंथी नेता लूला 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। अदालत के इस फैसले से उनके अगले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योजना को धक्का लगा है। लूला की पार्टी वर्कर्स पार्टी के नेता कार्लोस जर्राटिनी ने अदालत के इस फैसले पर निराशा जताई है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। जर्राटिनी ने कहा,
decisão que não levou em conta as testemunhas que não tem nenhuma prova factual de que Lula,
इस फैसले में सबूतों की अनदेखी की गई है। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि लूला ने घूस के रूप में अपार्टमेंट लिया। ये फैसला पूरी तरह से जेल में बंद एक उद्योगपति के बयान पर है। वे सीधे तौर पर लूला को 2018 के राष्ट्रपति चुनाव के दौर से बाहर करना चाहते हैं। ये थे वर्कर्स पार्टी के नेता जर्राटिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कतर संकट को सुलझाने को लेकर अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की खाड़ी देशों के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। टिलरसन आज एक बार फिर कतर लौटेंगे और सुलह की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने कतर के साथ एक नया आतंकवाद रोधी समझौता भी किया है जिसका मकसद बाकी खाड़ी देशों के साथ एक महीने से चले आ रहे कतर संकट को खत्म करना है। कतर से राजनयिक संबंध तोड़ने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि कतर प्रशासन आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कर रहा है और केवल प्रतिबद्धता जताने भर पर यकीन नहीं किया जा सकता। माल्टा की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानून बनाने की मंजूरी दे दी है। माल्टा ऐसा करने वाला यूरोपीय यूनियन का 15वां देश है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एफबीआई के निदेशक के पद के लिए मनोनीत किए जाने वाले क्रिस्टोफर रे ने ट्रंप के खिलाफ रुख लेते हुए कहा है कि ट्रंप की चुनावी टीम और रूस के बीच कथित तौर पर सांठगांठ की जांच में किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि उनको निशाना बनाकर ये कार्रवाई की जाती रही है। पिछले एफबीआई डायरेक्टर को ट्रंप ने कथित तौर पर उनकी मर्जी का काम न करने के कारण ही बर्खास्त कर दिया था। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका की एफबीआई और दीगर जांच एजेंसियों में कई वर्षों तक काम कर चुके क्रिस्टोफर रे अगले एफबीआई डायरेक्टर के ओहदे के लिए बुधवार को सेनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने पेश हुए। इस पेशी के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के रुख से बिल्कुल उलट रुख लेते हुए क्रिस्टोफर रे ने कहा कि 2016 के अमरीकी चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के बारे में जांच को वो किसी को निशाना बनाने वाली कार्रवाई नहीं समझते। इस सिलसिले में रिपब्लिकन पार्टी के ही सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने क्रिस्टोफर रे से सवाल किया कि क्या इस मामले में जांच के दौरान किसी को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है।
As the future FBI director, you consider this endeavor a witch hunt? I do not consider Director Mueller to be on a witch hunt.
क्रिस्टोफर रे कह रहे थे, मैं नहीं समझता कि डायरेक्टर मुलर इस मामले में किसी को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। मई महीने में एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर को 2016 के अमरीकी चुनाव के दौरान ट्रंप की चुनावी टीम और रूस के बीच कथित सांठगांठ की जांच के लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ये मुसलसल कहते रहे हैं कि अमरीकी इतिहास में किसी राजनेता पर ऐसे कीचड़ नहीं उछाला गया जैसे उन पर उछाला जा रहा है। बुधवार को भी उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि अमरीका के राजनीतिक इतिहास में किसी को उनकी तरह निशाना नहीं बनाया गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का ख्याल है कि रूस ने अमेरिकी चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में भी इस मामले में गहन छानबीन जारी है। हियरिंग के दौरान क्रिस्टोफर रे से यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे वफादारी निभाने की कोई बात कही है। उस पर रे ने कहा कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उधर व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता सैरा सैंडर्स ने इस बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा,
आई थिंक द प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट्स एनीबॉडी दैट वर्क्स एनीवेयर इन गवर्नमेंट टू प्लेज लॉयल्टी टू द कंट्री।
देखिए, मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति ये उम्मीद करते हैं कि जो भी किसी सरकारी पद पर हो वो देश के प्रति वफादार रहे, बस इतनी ही वफादारी चाहते हैं वो। याद रहे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई महीने की 9 तारीख को पिछले एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कोमी को अचानक उनके पद से हटा दिया था। कहा जाता है कि कोमी ट्रंप के मन मर्जी का काम नहीं कर रहे थे। एफबीआई डायरेक्टर के पद से हटाए जाने के बाद सेनेट में पेशी के दौरान जेम्स कोमी ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि वो उनसे वफादारी की कसम खाएं, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया था। सेनेट में हियरिंग के दौरान क्रिस्टोफर रे ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और अगर उनको मजबूर किया गया तो वो एफबीआई के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा भी दे देंगे। उम्मीद की जा रही है कि सेनेट में क्रिस्टोफर रे को एफबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए मंजूरी मिल जाएगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
पूर्वी अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूती में चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया है, जहां तैनाती के लिए चीन से सैनिकों की एक टुकड़ी रवाना भी हो चुकी है। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इस घटनाक्रम पर रक्षा मामलों के जानकार कमांडर उदय भास्कर से बात की और पूछा कि भारत के लिहाज से इसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं।
ये एक बहुत ही अहम कदम है चीन के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए, जहां तक चीन की जो सैनिक रूपरेखा है और उनकी जो क्षमता है, एक प्रकार से उनका जो फुटप्रिंट है, अभी ये पहली बार चीन के बाहर एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इन्होंने एक खास ऐसी जगह को चुना है जिबूती, अगर आप मैप पे देखेंगे वो बिल्कुल रेड सी के पास है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट माना जाता है। इस कदम से हम ये निष्कर्ष पे जरूर पहुंच सकते हैं कि अभी तक चीन जो एक पैसिफिक ओशन पावर माना जाता था, इस कदम से चीन अपना जो प्रेजेंस है उसे एक प्रकार से इंडियन ओशन में वो मजबूत करेंगे। और देखना है कि इस प्रकार की जो उनकी प्रेजेंस और जो उनकी क्षमता है जिबूती में, वो उसे किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उससे हमें शायद कुछ इशारा मिल सकता है।
एयर कोमोडोर उदय भास्कर, आपको ध्यान होगा 2015 में चीन ने अफ्रीका के देशों के साथ एक बड़ा सम्मेलन किया था और इस सम्मेलन में चीन ने कहा था कि वो अफ्रीका के विकास के लिए $60 अरब का निवेश करेगा, बड़ी मोटी रकम का निवेश करने का इरादा जता चुका है चीन अफ्रीका में। तो अफ्रीका में भारत के आर्थिक हितों के हिसाब से चीन की इस सक्रियता को यदि देखा जाए तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है?
चीन और भारत अफ्रीका को एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफी अपना खोज है, चाहे वो तेल हो या बाकी तरह तरह का जो रिसोर्सेज हैं। और चीन ने काफी अफ्रीका के अंदर ऐसा सौदा भी बनाया है जिससे उनको अपना एग्रीकल्चर के लिए भी काफी उन्होंने जमीन भी ले लिया वहाँ पे अलग अलग अपनी जो अग्रीमेंट्स के मुताबिक। तो इस वक्त भारत को मैं कहूंगा कि चिंता से ज्यादा जो कॉम्पिटिशन की हम बात करते हैं भारत चीन के बीच में, चीन ने काफी अपना वहाँ पे फुटप्रिंट को बढ़ाया है और कारण यही है कि चीन के पास भारत से कई गुना ज्यादा इस वक्त आर्थिक क्षमता है। चीन का इन्वेस्टमेंट, चीन का जो इस वक्त व्यापार है वो भारत से ज्यादा है और भारत को देखना है कि किन किन जगहों में अपनी जो पहचान है उसको और बढ़ा सके।
सैन्य मौजूदगी के मामले में अफ्रीका में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, चीन का या भारत का?
भारत जो है कोई किसी प्रकार का ओवरसीज मिलिट्री बेस भारत के पास नहीं है। चीन के भी जिबूती सबसे पहला बेस होगा, देखना कि वहाँ पे वो किस प्रकार के एसेट्स रखेंगे। एसेट का मतलब चाहे जहाज हो या पनडुब्बी हो या एयरक्राफ्ट हो या टैंक हो, यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स है। भारत ने एक निर्णय लिया है कि हम ओवरसीज मिलिट्री बेसिस नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा कुछ सिद्धांत अलग है, परंतु भारत का जो वहाँ पे फुटप्रिंट है, जो यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के नीचे कई प्रकार हमने वहाँ पे अपने फौज को भेजा है, जो अभी चीन जिबूती में बना रहा है, भारत के पास उस प्रकार की अभी तक मैं कहूंगा कि प्लान भी नहीं है।
कमांडर उदय भास्कर से बात कर रहे थे संदीप सोनी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ विषय भारत से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग गोरखा लैंड की मांग के साथ गोरखाओं का आंदोलन लगातार जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोरखा इस बार अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गोरखा लैंड के लिए आंदोलन पहले भी हुए हैं लेकिन इस बार गोरखा जिस तरह से डटे हैं उसकी असल वजह क्या है, जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक से बात की।
देखिए, इस बार जो आंदोलन है ये कुछ हद तक 1985-86 के आंदोलन जैसा लग रहा है, जहां की गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट उस वक्त जो उस इलाके का सबसे तगड़ा संगठन था, उन्होंने करीब 4-5 साल आंदोलन चलाया था। अभी हालत कुछ उस तरह का लग रहा है। इसका वजह यह है कि गोरखाओं में खास नाराजगी पैदा हो गया है। जो स्वशासन का व्यवस्था वहाँ हुआ था, जो गोरखा टेरिटोरियल ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम हुआ था, उससे गोरखा खास नाराज है। उनको ये लग रहा है कि बंगाल सरकार ने इसकी कामयाबी के रास्ते में हर तरह के गड़बड़ी पैदा किया है, इसलिए अब उनको लग रहा है कि अगर जब तक उनको अलग राज्य नहीं मिलता तब तक वो जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं अपने इलाके को लेकर, वो कर नहीं सकते हैं। इसका तीन वजह है हम समझते हैं। एक तो ये कि ममता बनर्जी के सरकार ने पहाड़ में तरह तरह का फूट डालने का कोशिश किया है गोरखा संप्रदाय के बीच, और सबसे बड़ा बात तो है कि गोरखा लोगों के साथ वहाँ जो लेपचा भूटिया है इनको भी डिवाइड करने का कोशिश किया है। साथ ही साथ जो गोरखा ऑटोनोमस टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो फंड मिलना चाहिए, जो राज्य सरकार से जाना चाहिए, उसमें तरह तरह के रुकावट पैदा किए गए हैं जिससे गोरखाओं में खास नाराजगी है। एक इमीडिएट जो गड़बड़ी हुआ है इसमें गोरखा लोगों का जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचा है। बंगाल सरकार ने अचानक ये जाहिर कर दिया कि बंगाल के हर कोने में बंगाली पढ़ना, बंगाली स्कूल के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल करना आवश्यक है। बाद में ये आदेश को वापस लिया गया है, बट तब तक तो घी डल चुका है आग में।
टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की पहचान मानी जाती है, पर्यटन जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने देखा है पिछले दिनों की वहां पर टॉय ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर आग जनी हुई है, उस पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, अपना काम धंधा रोजी रोटी सब छोड़कर बंद करके, इसे कैसे देखते हैं आप?
आप काम काज तो बंद कर सकते हैं, टॉय ट्रेन में रुकावट डाल सकते हैं, बट टॉय ट्रेन के उस जगह पे, उस स्टेशन पे आग लगाना, यानी कि जो आपका टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको विध्वस्त करना, ये हम समझते हैं कि ये कोई सही सोच रखने वाले गोरखा जो है उनका ये काम नहीं है। ये कोई मूवमेंट को जो सैबोटेज करने को चाह रहा है शायद उन लोगों का हरकत है। आज के बाद अगर आपको गोरखालैंड मिल जाता है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जिक्र करें, अगर मिलता है तो उस वक्त ये सब फिर से बनाने के लिए आपको जो खर्चा करना पड़ेगा, आज के तारीख में ये सबको विध्वस्त करने का कोई तुक नहीं बैठता। अगर आप लोगों को डरा के ये सब हरकत करके एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें वो अलग बात है, पर अगर लोग आपके साथ हैं जो जिसका जिक्र जिसका दावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और उनके नेता बिमल गुरु और रोशन गिरी कर रहे हैं, तो ये सब ट्रेन पे आग लगाना, ये सब करना, मतलब कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाय के बगीचे है, उन पर हमला करना, ये सब कोई तरीके वाली बात नहीं है।
ये थे कोलकाता से सुबीर भौमिक, ये बीबीसी है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आइए देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। दिनेश उपरेती अखबारों पर नजर दौड़ा चुके हैं, बताइए क्या कहते हैं आज के अखबार।
जी रेहान जी, इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर भारी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू होने की खबर तस्वीर के साथ छापी है। हेडलाइन है, बेस कैंप से 16 घंटे का सफर, एक ही आवाज, वे हमें यात्रा से दूर नहीं रख सकते। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की संसदीय समिति के सामने पेशी को भी इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक गवर्नर ने समिति को बताया कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों की वास्तविक संख्या अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि इनकी गिनती अभी भी जारी है। मिताली राज के वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान समेत कई अखबारों ने तस्वीर के साथ छापा है। ब्रिस्टल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रनों की पारी खेलकर मिताली 6000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। खास बात यह है रेहान जी कि मिताली ने ये रन सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा रफ्तार से बनाए हैं। सचिन ने जहां 6000 रन बनाने के लिए 170 पारियां खेली थी, वहीं मिताली ने 164 पारियों में ये रन बनाए।
क्या बात है।
आधार से जुड़े केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी, ये खबर भी कई अंग्रेजी और हिंदी अखबारों की सुर्खियों में है। ये सुनवाई 18 और 19 जुलाई को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ करेगी। दागी नेताओं पर आयोग की चुप्पी से सुप्रीम कोर्ट खफा, इस खबर को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने इसे पहली खबर बनाया है। अखबार की हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दोषी नेताओं पर चुप नहीं रह सकता चुनाव आयोग, दबाव है तो बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बिहार के बेगूसराय शहर में बीते हफ्ते एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया। मोहम्मद अनवर अपने स्कूल जाने वाले दोनों बेटों के साथ हिंदू बन गए हैं। आनंद को इस्लाम से कोई शिकायत नहीं है, उनका कहना है कि वो आसपास के मुस्लिम कट्टरपंथियों से परेशान होकर हिंदू बने हैं। मोहम्मद अनवर हिंदू बनने की कई वजह बताते हैं, उनके आरोपों पर मुस्लिम समुदाय की क्या है प्रतिक्रिया, सुनिए बेगूसराय से मनीष शांडिले की रिपोर्ट।
बेगूसराय शहर के मोहम्मद अनवर अब आनंद भारती बन गए हैं। अनवर उफ आनंद ने एक शिव मंदिर में 4 जुलाई को विधिवत शुद्धिकरण के बाद अपने दोनों बेटों के साथ हिंदू धर्म अपनाया। पेशे से वकील आनंद के मुताबिक वे अपने आसपास के मुस्लिम कट्टरपंथियों से परेशान होकर हिंदू बने हैं। आनंद को इस्लाम से कोई शिकायत नहीं है, वे इस धर्म के कथित ठेकेदारों से नाराज हैं और इस्लाम में घर कर गई जाति व्यवस्था का शिकार होकर उन्होंने धर्म बदला है।
मेरे बारे में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ये जो है कि साल में अगर 2 दिन नमाज पढ़ता है तो 2 दिन पूजा भी करता है, मुस्लिम के मैयत में मिट्टी देने जाता है तो कटिहारी भी जाया करता है, तो सब बात का जो बुद्धिजीवी मुस्लिम वो लोग अंदर से विरोधाभास शुरू किए, गौमांस मेरे गेट पर फेंका जाने लगा, हर बात बात पर मारपीट करने के लिए वो लोग चले आते थे।
बेगूसराय के पोखरिया 3 महला इलाके में आनंद का अपना मकान है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। उन्हें सबसे ज्यादा शिकायत अपने पड़ोसी मोनाजिर हुसैन और उनके परिवार से है। मोनाजिर बेगूसराय सिविल कोर्ट के रिटायर्ड कर्मी हैं। मोनाजिर आनंद के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं।
उनके बच्चा को तो हम लोग ने मदरसा जाने में मना किया, नहीं जाने मना किया, कुछ नहीं, बस इतना ही बात और कुछ नहीं लिख रहे हैं। सब अचानक हम लोग सुने, अचानक बने, वो अपने मुँह से बोलते थे कि हम हिंदू बनेंगे।
आनंद का कहना है कि परेशानियों से तंग आकर वे खुद 3 जुलाई को बजरंग दल के बेगूसराय जिला संयोजक शुभम भारद्वाज से मिले और हिंदू बनने की ख्वाहिश जाहिर की। शुभम बताते हैं,
इनके किसी क्लाइंट ने हमारे बारे में इनको बताया था, तो उन्होंने कहा कि मैं पुनः हिंदू संस्कृति स्वीकार करना चाहता हूं, आप हमारा सहयोग करें। तो बजरंगी लोग इनके पूरे सुरक्षा में लगे और एक हवन का कार्यक्रम करके इनको कश्यप गोत्र दिया गया।
आनंद कहते हैं कि मैं राष्ट्रहित में हिंदू बना हूँ।
राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि यहाँ मात्र एक धर्म हो, सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, वो जीने की एक पद्धति है, उसी से सब लोग निकले हैं। और सनातन धर्म में जब इस्लाम धर्म फैला, क्रिश्चियन धर्म फैला या और जो भी फैला, आज के डेट में उसमें सुधार हो रही है। तो इसमें अगर कुरीतियां हैं तो वो लोग भी नहीं सुधार रहे हैं। तो हमारा ख्याल है कि राष्ट्रहित में ये जरूरी है कि सब लोग आपस में फिर एक जगह मर्ज कर जाएं।
बेगूसराय के वरिष्ठ वकील मजहरुल हक पोखरिया इलाके में ही रहते हैं और आनंद उनके सहकर्मी हैं। वे आनंद के फैसले को उनका निजी मामला बताते हुए उनके सभी आरोपों को गलत बताते हैं।
इफेक्ट किया है इन दिस सेंस के ह्यूमिलेशन फील किया है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है और न देना चाहती है।
आनंद के मुताबिक उन्होंने धर्म बदलने से पहले अपने करीबी रिश्तेदारों से राय मशवरा नहीं किया। दूसरी ओर आनंद ने अपनी पत्नी शबनम सितारा से भी बीबीसी की बातचीत नहीं करवाई, हालांकि उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि मजहब बदलने का फैसला उन्होंने अपनी पत्नी की रजामंदी से किया है। लेकिन दिलचस्प यह कि शबनम ना तो धर्म बदलने के लिए मंदिर गई थी, ना ही उन्होंने अपना नाम ही अब तक बदला है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी बेगूसराय।
बेरोजगारी के बढ़ते शिकंजे के बीच कई ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने नौकरियों का सहारा लिया तो मगर जल्द ही अपना सब कुछ अलग शुरू किया और अपने पैरों पर खड़े हो गए। मर्द हों तो बात समझ में आती है, मगर बात अगर महिलाओं की हो तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। समाज की चुनौतियों के बावजूद कई ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और अपना खुद का उद्यम शुरू किया। सलमान रावी की रिपोर्ट। सुनो मेरी आवाज़, सुनो सुनो नया ये साज़, मुझे पंख मिले हैं आज। ये धुन गुजरात के वसंत तेरैया ने महिला सशक्तिकरण के लिए तैयार की। इस धुन के सहारे महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। पूरी दुनिया में रोजगार का बाजार सिकुड़ता जा रहा है, इससे भारत भी अछूता नहीं है। सरकारी महकमों में रिक्तियों का न भरा जाना और निजी क्षेत्र में नौकरियों की कटौती ने नई पीढ़ी के युवाओं के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। खास तौर पर महिलाओं के लिए तो चुनौती और भी बड़ी है। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी महिलाओं से करवा रहे हैं जो अपनी खुद की बॉस हैं। जी हाँ, ये वो महिलाएं हैं जो चाहती तो लाखों रुपए की तनख्वाह की नौकरी कर जिंदगी आराम से गुजार सकती थीं। इन्होंने देश और विदेश के बेहतरीन कॉलेजों से डिग्रियां हासिल भी की। सबसे पहले मिलिए विधिशा पसारी और स्तुति बघेरिया से, जिनकी उम्र 28 साल है। दोनों ही फैशन को समर्पित एक वेबसाइट भी चलाती हैं। विधिशा कहती हैं,
सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम हमें लगा होगा वो था कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि प्रियोन क्लोथ्स इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत बड़ा प्रेजुडिस है कि हम किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, तो लोगों को एजुकेट करना कि ये आइटम्स बिल्कुल अच्छे कंडीशन में हैं, हमने क्लीन कराए हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करना बड़ा चैलेंज था। और ऑल्सो
वहीं स्तुति का कहना है कि मर्दों से ज्यादा महिलाओं के लिए स्वावलंबी होना जरूरी हो गया है।
एक लड़की होना शुड नॉट बी अ रीजन कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बल्कि इट शुड बी अ बेटर थिंग कि आप लड़की होकर ये पक्का कर सकते हैं और आपको बहुत लोग इनकरेज भी करेंगे, तो आप उन लोगों से इनकरेजमेंट लीजिए।
मीरी अग्रवाल और अमांडा भंडारी ने भी साथ मिलकर कुछ अलग करने की ठानी। नौकरी करने के साथ साथ इन्होंने एक ऐसा पोर्टल शुरू किया जिसमें वो महिलाओं को अच्छा दिखने के टिप्स देने लगी। कुछ ही महीनों में इनका पोर्टल काफी लोकप्रिय हो गया और वो इससे अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी।
हमने जब पूरा अपना स्टार्ट करा, वी डिड आवर एजुकेशन एंड स्टफ, देन वी रियलाइज कि हाँ, ये है जिसमें पोटेंशियल है और वी कैन डू समथिंग.
आज आप क्या चला?
तो जैसे अमांडा ने आपको बताया वो पंजाबी फैमिली से, मैं बनिया फैमिली से हूँ, तो अगेन टिपिकल बिजनेस माइंडसेट.
27 साल की अंजलि बत्रा भी पढ़ाई पूरी करने के बाद पीआर कंपनी में काम करने लगी. चूंकि खाने की शौकीन रहीं, इसलिए उन्होंने फेसबुक पर खाने से संबंधित अपना एक पेज शुरू किया. इस पेज पर वो अपनी ही तरह के खाने के शौकीन लोगों को उन जगहों की जानकारी देने का काम करती थीं जहां मनपसंद व्यंजन मिल सके. धीरे धीरे फेसबुक पर उनके 65,000 फॉलोअर हो गए. फिर क्या, फिर बड़े बड़े खाने के ब्रांड्स ने उनसे संपर्क करना शुरू किया और अपने प्रचार के लिए उन्होंने अच्छी खासी रकम का प्रस्ताव भी देना शुरू किया.
सारे ब्रांड्स ने देखा कि हमारे पास ऑडियंस तो बिल्कुल परफेक्ट थी, अब उनको इस ऑडियंस के साथ सिर्फ इंटरैक्ट ही नहीं बट उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में या उनके रेस्टोरेंट या उनकी सर्विस के बारे में लोगों को बताना था.
इन सभी महिलाओं का कहना है कि आज के दौर में महिलाओं के लिए जरूरी हो गया है कि वो किसी पर निर्भर ना रहें. ये तो सिर्फ कुछ ही महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, जबकि देश के कई हिस्सों में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर कुछ ऐसा किया जिससे उनकी मिसालें दी जाने लगी. ये महिलाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं. सलमान रावी, BBC.
खराब फिटनेस और चोट ने कल विंबलडन जीतने की आस लगाए दो खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता देखने को मजबूर कर दिया. एंडी मरे और नोवाक जोकोविच दोनों अपने क्वार्टर फाइनल मैच हार गए. विंबलडन से पवन सिंह अतुल.
विंबलडन से BBC हिंदी की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं हूं पवन सिंह अतुल. आखिरकार कल डिफेंडिंग चैंपियन एंडी मरे अपने कूल्हे की दर्द से हार गए. अमेरिका के सैम क्वेरी के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी दो सेटों में वो लाचार से दिखे. सैम क्वेरी 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1 से मैच जीतकर साल 2009 में एंडी रॉडिक के बाद विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले अमरीकी बन गए हैं. मैच के बाद सैम क्वेरी ने कहा, मैं अब भी अंतिम अंक सही ढंग से पाने के बारे में सोच रहा हूं. मैंने शुरुआत तो अच्छी नहीं की लेकिन कोशिश करता रहा और चौथे और पांचवें सेट में जाकर अपनी लय में आया. विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचना किसी सपने के साकार होने जैसा है. सैम क्वेरी के शब्द. उधर रोजर फेडरर 8वीं बार विंबलडन खिताब जीतने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं. फेडरर ने रोनिच को 6-4, 6-2, 7-6 से हराया. विंबलडन में फेडरर की ये 100वीं जीत है.
Can't believe it, 100 matches, it's a lot, but very happy that my body kept me going over all these years and it was a perfect setting.
100 मैच जीत चुका हूँ, यकीन नहीं हो रहा. मैं खुश हूं कि इस दौरान मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया. ये बिल्कुल माकूल माहौल था. बढ़िया मौसम, जोशीली भीड़, सेंटर कोर्ट पर मैक्सिकन वेव दिखी जो आम बात नहीं. बहुत अच्छा लगा. तो एक और सेमीफाइनल में पहुंचकर मैं बेहद खुश हूं. रोजर फेडरर के शब्द. अब फेडरर शुक्रवार को सेमीफाइनल में टॉमस बर्डिक के सामने होंगे क्योंकि बर्डिक और नोवाक जोकोविच के बीच मैच में जोकोविच ने घायल होने की वजह से हार स्वीकार कर ली. पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच पहला सेट हार चुके थे और दूसरे में भी पहली दो गेम हार चुके थे. इसके बाद उन्होंने कोहनी की चोट की वजह से मैच छोड़ दिया. पुरुष एकल मुकाबलों के एक और क्वार्टर फाइनल में मैरिन चिलिच ने जील्स मुलर को 3-6, 7-6, 7-5, 5-7, 6-1 से हरा दिया है. विंबलडन में कल का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा. भारत की सानिया मिर्जा और इवान डोगिक की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के तीसरे राउंड में हार गई है. उन्हें हेनरी कॉन्टिनेन और हेदर वाटसन की जोड़ी ने 7-6, 6-4 से हराया. लेकिन रोहन बोपन्ना और कनाडा की गैब्रियला डाब्रोस्की की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के तीसरे राउंड में जीत गई है. इस जोड़ी ने एना कोनियोख और निकोला मैक्टिच की जोड़ी को 7-6, 6-2 से हराया. आज ही विंबलडन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच भी खेले जाएंगे. पवन सिंह अतुल, BBC, विंबलडन.
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर.
BBC समाचार. अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के नए निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि वे नहीं मानते कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच निशाना बनाकर की जा रही है. सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नाजरान के एक घर में आग लगने से 10 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है. ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 9.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है. कतर संकट को सुलझाने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की खाड़ी देशों के साथ बातचीत बेनतीजा रही है. BBC समाचार।
नमस्कार, भारत को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रिहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।